नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बोबना जी। गिरीश जी, स्टूडियो में आपका स्वागत।
बहुत बहुत धन्यवाद शशांक आपका।
और कहां से शुरुआत करूं यही मैं सोच रहा था। भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा, महिला टीम सामना करेगी स्पेन से। दोनों के लिए एक हार एक जीत का फॉर्मूला अब तक रहा हुआ है।
बिल्कुल, एक हार। भारतीय टीम जो है वो स्पेन से खेली तो पहला मैच उन्होंने गवाया, फिर लेकिन वापसी की है 2-0 से स्पेन के खिलाफ। वहीं महिलाओं की टीम ने जो पहला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ वो 3-2 से जीता था कल, हालांकि 2-2 पर बराबरी किया था, लेकिन वो जो इंडिया शूटआउट पे हार गई, एक बोनस पॉइंट मिल गया वहां पर इंग्लैंड को। तो इस लिहाज से जो आने वाले मुकाबले 18 तारीख और 19 तारीख को है, भारत का सामना जर्मनी से होगा और महिलाओं की टीम की बात करें तो उनका स्पेन से होगा। तो ये दो मुकाबले उनके होंगे ये, उसके बाद फिर 21-22 को, कहने का मतलब 10 दिन के अंदर 8 मैचेस खेल रहे हैं हमारी टीम।
बिल्कुल, विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे हम हॉकी पर। पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बड़ोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले गेंदबाजी कर रहा है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के पहले दिन गुजरात के साथ केरल ने 4 विकेट पर 206 रन और मुंबई के साथ विदर्भ ने 5 विकेट पर 308 रन बनाए। प्रो लीग में कल भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला जर्मनी से और महिला टीम का सामना स्पेन से होगा, और 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से चेन्नई में शुरू होगी। तो शुरुआत हम करते हैं महिला प्रीमियर लीग से ही। वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग के क्रिकेट में इस समय दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच चल रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, और बेंगलुरु ने जो ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 5 विकेट पर 89 रन बना लिए हैं। मतलब 5 विकेट बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, और रन भी अभी बहुत ज्यादा चार्ट पर है नहीं।
12 ओवर की समाप्ति हो गई है तो ताजा स्कोर है 95-5, जो कि आज RCB की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीता। और इस संस्करण में अभी ये वडोदरा में मैचेस हो रहे हैं तो जो भी टीम पहले टॉस जीत रही है शशांक, वो गेंदबाजी का चयन करते हैं। उनको मालूम है कि दूसरी पारी में ड्यू आएगा, वहां पर गेंदबाजी करना आसान नहीं होगा, इसलिए चेज करती हुई टीम, पहले भी 3 मुकाबले देखे तो सभी चेज करती हुई टीम ने मैचेस अपने जीता है। तो RCB ने टॉस जीत के फील्डिंग का एक बदलाव किया, एकता बिष्ट को लाया गया प्रेरणा रावत की जगह। प्रेरणा रावत, उन्होंने 1 विकेट हालांकि पिछले मैच में लिया था जो उन्होंने जीत हासिल की थी टूर्नामेंट के पहले ही मैच में, लेकिन काफी रन गंवाया। तो और DC ने दिल्ली कैपिटल्स, तो पिछले मैच में उनके पास एक समस्या ये थी कि उनके जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थे, कोई बीमार थे, तो इस वजह से उन्होंने 3 खिलाड़ियों को खिलाया। आज पूरी टीम उपलब्ध थी और वहां पर बदलाव किया गया। मेरिजानी कैप जो साउथ अफ्रीका की ऑलराउंडर है उनको लिया गया, और जेस जॉनसन को लाया गया निकी प्रसाद और एलिस कैप्सी की जगह
जी।
तो लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें तो शुरुआत काफी खराब रही। पहला विकेट ही पहले ओवर में 1 रन पे शेफाली वर्मा, जिन पर काफी दारोमदार होता है, वो विकेट गवा दिया। फिर जेमेमा रोड्रिक्स जो काफी हरफन मौला खिलाड़ी हैं और अच्छा खेल रही थी, 22 गेंदों पे 34 रन बनाने के बाद स्टंप हो गई और ऋचा घोष ने स्टंप किया उनको। और उसके बाद आज जैसे जेस जेनसन को भी लाया गया तो उन्होंने काफी कुछ किया नहीं, 1 ही रन बना पाई। अभी फिलहाल जो है 100 रन बन गए, 5 विकेट हैं, और अब ये जो बचे हुए 7 ओवर हैं यहां पर एक बड़ा लक्ष्य देना पड़ेगा RCB को। और ये मैं याद ला दूं अपने श्रोताओं को, ये रीमैच है पिछले संस्करण के फाइनल का, और RCB और दिल्ली कैपिटल्स, RCB वुमेन्स और दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में पिछले बार इनका आमना सामना हुआ था फाइनल में। और इसके पहले जो रिकॉर्ड रहा था इन दोनों टीम का, दिल्ली के पक्ष में 4-0 का था, लेकिन फाइनल में वहां पर दिल्ली कैपिटल्स हार गई, एक तरफा मुकाबला रहा। इस वजह से अब ये देखें कि डिफेंडिंग चैंपियन जो RCB है वो यहां पर अभी भी मेरे हिसाब से उनका पलड़ा भारी लग रहा है
जी। और दोनों टीम की अब तक की बात करें तो दोनों ने अब एक एक मैच जीते हुए हैं। अब तक दिल्ली ने मुंबई इंडियंस को और बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को हराया था। कल के मैच के अगर रुख करें तो वडोदरा में गुजरात जायंट्स ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया था और गुजरात की वंडर वुमेन कप्तान एशले गार्डनर का क्या कहना है, दोनों ही मैच में जबरदस्त खेला है उन्होंने। कल 144 रन का लक्ष्य गुजरात ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच कप्तान एशले गार्डनर ने 52 रन बनाए, 2 विकेट भी लिए। तो एशले तो बिल्कुल राज कर रही है, दोनों मैच हमने उनके देखे, पहले मैच में भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया और कल का मैच भी उन्हीं के नाम रहा एक तरह से।
बिल्कुल, अगर आप देखें तो यूपी वॉरियर्स ने बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं दिया 143 पे 9
जी,
और उसका जो 18वें ओवर में ही गुजरात जायंट्स जो जीजी है उन्होंने इसका पीछा कर लिया। और जैसे आप बात करते हैं एशले गार्डनर 52 रन उन्होंने बनाया और सिर्फ 32 गेंदों का सामना किया, तो इस लिहाज से गुजरात जायंट्स की शुरुआत तो कम से कम इस प्रतियोगिता में अच्छी हुई है। आज अगर आप देखेंगे तो सभी टीम, 5 ही टीम है, सबने एक एक मुकाबले अपने खेल रही है। आरसीबी अपना दूसरा और दिल्ली कैपिटल्स अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है। इस तरह से अब सभी टीम अपने अपने अब दो दो मुकाबले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वो सबसे बड़ा जो होगा, हालांकि 5 में से 4 ही टीम्स क्वालिफाई, एक जो टीम है वो बच जाएगी आखिर में, लेकिन सारे मैचेस जो होंगे उस पर एनआरआर रन रेट जो है काफी मायने रखता है शशांक। तो इस लिहाज से कोई भी मैच इनको जो है कम नहीं आंकना चाहिए किसी भी टीम को।
बिल्कुल, क्रिकेट की बात ही जारी रखते हैं तो रणजी ट्रॉफी का रुख करते हैं। अहमदाबाद में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में गुजरात के साथ केरल ने पहले दिन 4 विकेट पर 206 रन बना लिए हैं। सचिन बेबी 69, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है वो 30 रन बनाकर क्रीज पर हैं और आज केरल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। तो मजबूत टीम है गुजरात सामने, लेकिन केरल ने एक सदी शुरुआत की है, 206 रन 4 विकेट पर उन्होंने आज बना लिया और दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, सचिन हो या मोहम्मद अजहरुद्दीन हो।
तो गुजरात वर्सेस केरला की बात करें, गुजरात की टीम ने 2016-17 की चैंपियन है और 2019 और 20 के बाद पहली बार ये सेमीफाइनल में है खेल रही है। वही गुजरात की टीम में जो है ओपनर आप देखें तो प्रियंक पंचाल है, टॉप स्कोरर है। वहीं पर जो आप केरला का ये सिर्फ दूसरा सेमीफाइनल है यहाँ पर
जी।
2018 में उन्होंने सेमीफाइनल खेला था विदर्भ के खिलाफ, वो एक तरफा मुकाबला रहा था, इस वजह से वो वहां पर उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन इस टीम में, केरला की टीम में, मैं एक ऐसे खिलाड़ी की बात करना चाहूंगा शशांक, जलस सक्सेना
जी,
वेटरन प्लेयर है, अपना 150वां फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं। इस सीजन में 6000 रन और 400 विकेट पूरे कर चुके हैं, हालांकि आज 45 के स्कोर पे आउट हो गए। लेकिन जो केरला की टीम है उसका आज का जो वो उन्होंने मैच आज के दिन की बात करी, टॉस जीत के बैटिंग किया लेकिन काफी धीमी बल्लेबाजी रही, पिच में कुछ जान नहीं था। हालांकि सचिन बेबी जो कप्तान है नाबाद 69 रन पर भी खेल रहे हैं, जलस सक्सेना ने सिर्फ 30 रन बनाए, माफ कीजिएगा। तो वो एक ऐसी पिच जिस पर गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम इनके दिमाग में कहीं वो जम्मू कश्मीर वाला मैच तो नहीं है जो दिमाग में वो चल रहा है कि आप विकेट को बचाए रखें, और कल जब वो खेलेंगे तो उसके बाद इनका लक्ष्य होगा कम से कम एक बड़ा स्कोर दिया जाए कि ताकि मुकाबला एक तरफा ना रहे।
बिल्कुल, उधर नागपुर में दूसरा सेमीफाइनल मैच जो है मुंबई और विदर्भ के बीच चल रहा है। विदर्भ ने पहले दिन 5 विकेट पर 308 रन बना लिए हैं। यश राठौर 47 और अक्षय वडकर जो है 13 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दानिश मालकर ने जो है वो 79, ध्रुव शैरी ने 74 और करुण नारायण ने 45 रन की पारी खेली। तो बड़े स्कोर की ओर कहीं ना कहीं विदर्भ, 308 रन ही पहले दिन बना लिए हैं।
हाँ, मुंबई और विदर्भ, याद दिलाएं अगेन अपने श्रोताओं को कि पिछले सत्र में ये दोनों फाइनल में आमने सामने थे जहां मुंबई ने 169 रन से मुकाबला जीत के चैंपियनशिप हासिल की थी। सो इस साल विदर्भ ने काफी कड़े मुकाबले खेले हैं, हैदराबाद के खिलाफ पहली पारी में 190 रन बनाने के बाद 136 रन से पिछड़े, फिर उसके बाद 355 रन बनाकर हैदराबाद को 161 पे आउट किया। करुण नायर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब विदर्भ से खेलते हैं और उन्होंने काफी मजबूती दी है। 105 की दूसरी, वो जो पिछला मैच जब मैं हैदराबाद की बात कर रहा था उसमें शतकीय पारी खेल रही थी, आज 45 रन बना के करुण नायर आउट हुए। विदर्भ के जो मुख्य खिलाड़ी हैं फैज फजल रिटायर्ड हो चुके हैं, उमेश यादव चोटिल है, और ऐसे में करुण नायर का अनुभव काफी काम आ रहा है और ग्रुप स्टेज में 7 में से 6 मैचेस विदर्भ ने जीते हैं। हालांकि मुंबई की टीम इस सीजन किसी तरह सेमीफाइनल में जगह बना पाई, काफी संघर्ष करना पड़ा, जम्मू कश्मीर जैसी टीम से वो हार गए
जी।
और लेकिन जो उनके मुख्य खिलाड़ी हैं वो है शार्दुल ठाकुर, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, उन्होंने काफी भार उठाया हुआ टीम का, बल्लेबाज जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, हालांकि अजिंक्य रहाणे ने जब जरूरत पड़ी तो पिछले मैच में उन्होंने शतक लगाया, लेकिन लोअर ऑर्डर पे आके इन लोगों ने संभाला और विकेट भी लिया है।
बिल्कुल, अब क्रिकेट से थोड़ा बाहर निकलते हैं, रुख करते हैं हॉकी का। कल बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले हैं, भुवनेश्वर में FIH हॉकी प्रो लीग के तीसरे मैच में कल शाम 7:30 बजे भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा। भारतीय टीम ने 2 मैच में 3 अंकों के साथ फिलहाल अंक तालिका में 8वें स्थान पर है। कल के मैच का रुख कर लेते हैं, कल भारत ने स्पेन को 2-0 से हराया था।
मनदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह के गोलों की बदौलत भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए स्पेन को हराया। पहले मैच में 1-3 से हार झेलने के बाद कल भारत का डिफेंस पिछले मुकाबले की तुलना में काफी बेहतर था। भारतीय टीम ने स्पेनिश टीम को रोके रखा और अपना दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम को 32वें मिनट में पहली सफलता मिली। मनदीप सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर से रिबाउंड का फायदा उठाते हुए दिलप्रीत सिंह की मदद से गेंद को गोल पोस्ट में भेज दिया। इसके बाद 39वें मिनट में दिलप्रीत सिंह के गोल से भारत ने बढ़त 2 गुनी कर दी। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि स्पेन के खिलाफ जीत से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन हमें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। खासतौर पर पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने की क्षमता को सुधारना होगा। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
से नीचे रैंकिंग वाली टीम स्पेन के साथ टीम ने संघर्ष किया, एक जीता एक हारा, लेकिन जर्मनी उनसे रैंकिंग में ऊपर है, कितनी चुनौती आप देख रहे हैं टीम के लिए?
देखिए, चुनौती तो सबसे पहले भारतीय पुरुष टीम की बात करें
जी,
तो उनको कम से कम यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन पर बहुत जोर, जो आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। स्पेन के खिलाफ 2 मैचों में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले और हमने अब तक 1 को भी कन्वर्ट नहीं किया है। तो क्रेग फुल्टन और उसकी टीम, हमारे हरमनप्रीत सिंह कप्तान, इन सबको नजर करना पड़ेगा क्या अब रणनीति अपनाए, वहां पर पीसी जब मिल रहे हैं उसको कैसे कन्वर्ट करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप कोई भी मैच बिना पीसी कन्वर्सन के नहीं जीत सकते, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी
जी। और महिला वर्ग टीम की बात करें, जिसने एक मैच तो बड़े अच्छे से जीता लेकिन दूसरे में करीबी मुकाबला जो है वो पेनाल्टी शूट आउट में वो हार गई थी स्पेन से, सॉरी इंग्लैंड से, अब उनका मुकाबला कल स्पेन से है।
बिल्कुल, पहला मैच जो 3-2 से जीता फिर दूसरा शूटआउट में हारे, तो हमारी जो महिलाएं हैं लड़कियां, वो देखें आप, उनका पीसी कन्वर्जन पहले मैच 3 में से 2 को गोल में बदला, लेकिन दूसरे मैच में 3 में से 0, तो यहां भी उनके लिए चुनौती होगी। हरेंद्र सिंह हालांकि बागडोर संभाले हुए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, जो हमें नाकामियां मिली उनसे वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सबसे अच्छा हुआ था कि अभी हॉकी इंडिया की जो लीग हुई है उससे लड़कियां टच में हैं, जो भी जितनी भी निकी हमारे सलीमा टेटे को है और वो काफी चैलेंज दे रही है, तो ये माना जाए कि आने वाले मुकाबले में इनका पक्ष मुझे मजबूत दिख रहा है।
हॉकी से बाहर निकलते हैं, पैरा एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होगी।
देश के सबसे बड़े पैरा एथलेटिक्स आयोजनों में 30 टीम के रिकॉर्ड 1476 पैरा एथलीट 155 स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता में सुमित अंतिल, मनोज सभापति, मनोज सिंह राज, मरियप्पन थंगावेलू, मुथुराजा, होकाटो सेमा, नवदीप सिंह और योगेश कथुनिया जैसे प्रमुख पैरा एथलीट खेलेंगे। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झजारिया ने कहा कि ये चैंपियनशिप भारत में पैरा एथलेटिक प्रतियोगिताओं के लिए नए मानक स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में करीब 1500 खिलाड़ियों की मौजूदगी देश में पैरा खेलों के तेजी से विकास और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। विश्व स्तरीय सुविधाओं और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए एक नए युग के साक्षी बन रहे हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
तो अब तक का सबसे बड़ा इवेंट पैरा एथलेटिक्स का अगर हम इवेंट देखें तो बड़े मौके हैं यहाँ खिलाड़ियों के पास खुद को प्रूव करने के।
बिल्कुल, बहुत मौके हैं और जो पेरिस ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स के जो मेडलिस्ट हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, और एक नाम जो है मरियप्पन थंगावेलू
जी।
तो आप अगर देखें तो 2016 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उसके 2020 में भी जीता, फिर 2024 में भी जीता, तो हर एडिशन में वो जीतते आए हैं। तो इस लिहाज से, और एक और जो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर 2012 में हमें एक ही मेडल मिला था पैरालंपिक्स में
जी।
और अब जो है हम 29 तक आ गए, तो काफी इसके नेशनल गेम्स की वजह से भी काफी इसमें बढ़ोतरी होने की चांसेस हैं।
जी गिरीश, आप स्टूडियो में आए, विस्तार से आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैंप की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।